ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा एमाले ने समानुपातिक श्रेणी के 16 सांसदों के नाम किए तय। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और नेपाली कांग्रेस की कल होने वाली बैठकों में समानुपातिक सांसदों के चयन पर होगी चर्चा। पिछले 5 चुनावों की तुलना में इस बार औसतन कम मत असामान्य हुए, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। पश्चिम एशिया में नेपाली नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है, परराष्ट्र मंत्री बालानंद शर्मा का बयान। कतर से नेपाल लौटना चाहने वाले नेपाली नागरिकों से दोहा स्थित दूतावास ने आवेदन करने का किया है आग्रह। खसरा महामारी फैलने के बाद बागलुंग की ढोरपाटन नगरपालिका में 4,600 से अधिक बच्चों को लगाया गया खसरे का टीका। और उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी जापान सागर की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी ने समानुपातिक श्रेणी के लिए 16 सांसदों के नाम तय किए हैं। भक्तपुर में आज हुई केंद्रीय सचिवालय बैठक में आदिवासी जनजाति समूह से भूमिका सुब्बा, गंगा देवी श्रेष्ठ, राम बहादुर थापा मगर और कुलभक्त साके के नाम की सिफारिश की गई। खस आर्य समूह से पद्मा अर्याल, टुका भद्र हमाल, यशुदा कुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल और पुष्पराज कड़ेल के नाम की सिफारिश की गई। इसी प्रकार थारू समुदाय से कृपाराम राणा, दलित समुदाय से विष्णुमाया विक और नीता घतानी, मधेसी समुदाय से रिंगला यादव, यशोदा कुमारी यादव और चंदेश्वर मंडल तथा मुस्लिम समुदाय से साजिदा सिद्दीकी के नाम की सिफारिश की गई है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के मोहन प्रसाद ओली, केंद्रीय सदस्य कृष्ण थापा तथा पूर्व केंद्रीय सदस्य खगेन्द्र राय के निधन पर शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सचिवालय बैठक कल होगी। पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा के अनुसार बैठक में प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के अंतर्गत समानुपातिक श्रेणी के उम्मीदवारों की सिफारिश के विषय पर चर्चा होगी। पार्टी के सभापति रवि लामिछाने की अस्वस्थता के कारण आज होने वाली बैठक को कल सुबह के लिए स्थगित कर दिया गया है। समानुपातिक श्रेणी के नामों को अंतिम रूप देने के लिए नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक कल होगी। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सानेपा में कल दोपहर 1 बजे होने वाली बैठक में समानुपातिक बंद सूची में शामिल उम्मीदवारों में से पार्टी को प्राप्त सीटों के आधार पर प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चयन कर निर्वाचन आयोग को भेजने के विषय पर चर्चा होगी। कांग्रेस मुख्यालय के कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलाल ने यह जानकारी दी। फागुन 21 को संपन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव में कुल 4.7% मत सामान्य हुए हैं। निर्वाचन आयोग के सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जीसी के अनुसार प्रत्यक्ष और समानुपातिक दोनों चुनाव प्रणालियों में मिलाकर यह प्रतिशत रहा। इससे पहले के वर्ष में 2079 में हुए प्रतिनिधि सभा चुनाव में 5.06% और 2074 के चुनाव में 5.18% मत असामान्य हुए थे। इसी प्रकार 2070 में हुए दूसरे संविधान सभा चुनाव में 4.96% और 2064 के से पहले के चुनाव में, जैसे संविधान सभा चुनाव में 5.15% मत असामान्य हुए थे। इस प्रकार पिछले 5 चुनावों की तुलना में इस बार औसतन कम मत असामान्य हुए हैं। परराष्ट्र मंत्री बालानंद शर्मा ने कहा है कि विदेशों में प्राप्त ज्ञान, कौशल और अनुभव का उपयोग मातृभूमि के विकास के लिए किया जाना चाहिए। गैर आवासीय नेपाली संघ के 12वें विश्व सम्मेलन का आज काठमांडू में उद्घाटन करते हुए उन्होंने प्रवासी नेपाली समुदाय से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए देश के भू राजनीतिक संबंधों और सौम्य शक्ति को बढ़ाने में संघ को सेतु की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने यह भी जानकारी जानकारी दी कि संघ के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार आवश्यक कानूनों में संशोधन करेगी। पर राष्ट्रमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्षों के कारण विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार संवेदनशील है और आपातकालीन स्थिति में उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए परराष्ट्र मंत्रालय और संबंधित देशों में स्थित नेपाली दूतावासों के माध्यम से उधार उड़ाने संचालित की जा रही है। कतर के दोहा स्थित नेपाली दूतावास ने नेपाल लौटना चाहने वाले नेपाली नागरिकों से आवेदन करने का अनुरोध किया है। दूतावास ने आज सूचना जारी करते हुए नेपाल लौटने के इच्छुक नेपाली नागरिकों से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आवेदन करने की अपील की है। मध्य पूर्व की वर्तमान परिस्थितियों के कारण सऊदी अरब के हवाई अड्डों के माध्यम से नेपाल यात्रा करनी पड़ रही है, इसलिए वैध आवासीय अनुमति पत्र यानी कतर पहचान पत्र रखने वाले कतर में रहने वाले नेपाली नागरिकों से दोहा स्थित ताशीर सऊदी वीजा सेवा केंद्र में के माध्यम से पर्यटक वीजा के लिए समय निर्धारित कर आवेदन करने का अनुरोध किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। बागलुंग जिले की ढोरपाटन नगरपालिका के 9 वार्डों में फैले दादुरा यानी खसरे को नियंत्रित करने के लिए 4617 बच्चों और किशोर किशोरियों को टीका लगाया गया है। गंडकी प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख प्रवीण शर्मा ने बताया कि ढोरपाटन क्षेत्र में महामारी के रूप में फैले खसरे को नियंत्रित करने के लिए नगरपालिका भर में 6763 बच्चों और किशोर किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था और पहले ही दिन में 4617 बच्चों को टीका लगाया गया है। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर उपयोग में लाने की नई नीति लागू कर दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा जारी पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण कर उपयोग में लाने संबंधी आदेश 2082 शुक्रवार को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस आदेश को माध्यम से स्वदेशी कच्चे पदार्थों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, कृषि तथा जैविक स्रोतों का उपयोग बढ़ाना और ऊर्जा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करना सरकार का उद्देश्य है। आदेश के अनुसार नेपाल आयल निगम उपलब्धता के आधार पर प्रति लीटर पेट्रोल में अधिकतम 10% तक एथेनॉल मिलाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिपरिषद इस अनुपात को घटा बढ़ा भी सकती है। एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकने वाले कच्चे पदार्थों में मोलासेस, नेपियर घास, बेकार होने वाले कृषि और वनजन्य जैविक पदार्थ, पुआल, मक्के का डंठल, गेहूं का भूसा, सिमल तरुल, कसवा, सड़ा गला अनाज के साथ ही अन्य आवश्यक रसायन शामिल है। खाद्यान्न के दुरुपयोग को रोकने के लिए खाने योग्य अनाज को इथेनॉल उत्पादन में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है। आदेश में यह भी उल्लेख है कि उद्योगों को उत्पादन प्रक्रिया में पर्यावरण अनुकूल उपाय अपनाना होगा, गुणवत्ता मानक बनाए रखने होंगे और गुणवत्ता परीक्षण की जिम्मेदारी अपनी ही प्रयोगशालाओं से पूरी करनी होगी। निगम भी प्रत्येक टैंकर का गुणवत्ता परीक्षण करने के बाद ही उसकी खरीद करेगा। काठमांडू महानगरपालिका ने सामुदायिक विद्यालयों और अस्पतालों की कैंटीनों में खाद्य स्वच्छता को कड़ाई से लागू करने का काम शुरू किया है। महानगरपालिका की खाद्य प्राविधिक भारती अधिकारी ने जानकारी दी है कि उपभोक्ताओं के लिए खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य व्यवसायियों के क्षमता विकास कार्यक्रम और निरीक्षण कार्य को साथ साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी के अनुसार महानगरपालिका और खाद्य प्रौद्योगिकी का गुणवत्ता नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम सामुदायिक विद्यालयों और अस्पतालों की कैंटीनों का नियंत्रण निरीक्षण कर रही है। बाल बालिकाओं के स्वास्थ्य पोषण और दोपहर भोजन कार्यक्रम की गुणवत्ता सुधारने के लिए महानगरपालिका ने सामुदायिक विद्यालयों के 23 भोजन नर्स सहित 45 लोगों को खाद्य स्वच्छता और पोषण संबंधी प्रशिक्षण भी दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। जापान के तटरक्षक विभाग ने शनिवार दोपहर उत्तर कोरिया से मिसाइल प्रक्षेपित किए जाने की जानकारी दी। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्री क्षेत्र में गिरने का अनुमान है। घटना के बाद जापान सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय स्थित संकट प्रबंधन केंद्र में संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक आपातकालीन दल का गठन किया है। यह दल घटना से संबंधित जानकारी एकत्र करने के साथ साथ संभावित क्षति की स्थिति की भी जांच कर रहा है। दक्षिण कोरिया की संयुक्त सेनाध्यक्ष समिति के अनुसार उत्तर कोरिया ने 10 से अधिक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है। दक्षिण कोरियाई सेना के अनुसार ये मिसाइल राजधानी प्योंगयांग के निकट सुनान क्षेत्र में जापान सागर की ओर प्रक्षेपित की गई थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेकपा एमाले ने समानुपातिक श्रेणी के 16 सांसदों के नाम किए तय। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और नेपाली कांग्रेस की कल होने वाली बैठकों में समानुपातिक सांसदों के चयन पर होगी चर्चा। पिछले 5 चुनावों की तुलना में इस बार औसतन कम मत असामान्य हुए, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। पश्चिम एशिया में नेपाली नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है, परराष्ट्र मंत्री बालानंद शर्मा का बयान। कतर से नेपाल लौटना चाहने वाले नेपाली नागरिकों से दोहा स्थित दूतावास में आवेदन करने का किया है आग्रह। खसरा महामारी फैलने के बाद बागलुंग की ढोरपाटन नगरपालिका में 4,600 से अधिक बच्चों को लगाया गया है खसरे का टीका। और उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी जापान सागर की ओर। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।